नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पुरी में ग्रांड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।